السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. आजकल नेकियों के इस मौसम बहार में हम सब कोशिश कर रहे हैं कि नेकी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, और हम अपनी किताब को तेज़ी से लिखते चले जा रहे हैं। ये अल्लाह ताला का बड़ा इंसाफ होगा कयामत के दिन कि वो फरमाएगा, इकरा किताबक, अपनी किताब तो खुद पढ़। यानी इंसान से कहा जाएगा कि जो अमल तुमने किया है उसको तुम खुद देख लो, किसी और का कोई भी उल्टा सीधा काम हमारे जिम्मे नहीं लगा दिया जाएगा, किसी और का जुर्म हमारे सर नहीं थोप दिया जाएगा, बल्कि ये हमारे अपने ही अमल होंगे, अपनी बातें, अपने ही काम जो हमारी किताब में लिखे होंगे। अब सवाल ये बनता है कि हम क्या चाहते हैं कि हमारी किताब में क्या लिखा हो। जब हम कयामत के दिन इसको खोलें तो ये कैसी हो? ये वो किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा लिखी जाने वाली किताब है, मगर आज नहीं बल्कि कयामत के दिन ये पढ़ी जाएगी। अपनी इस किताब के मुसन्निफ़ हम खुद हैं, कोई और नहीं ये लिख सकता। लिहाजा आज देखना यह है कि मैं क्या लिख रही हूँ। सदका व खैरात, नमाजें, तस्बीहात, रोज़े, ये सब लिख रही हूँ। इसके अलावा और क्या लिख रही हूँ? नेकियों में तो बेशक हम सब दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ साथ हमने ऐसे काम भी शुरू किए हुए या ऐसे कामों को छोड़ा नहीं है जो वहाँ पे शर्मिंदगी का बाइस बने? क्योंकि उस किताब में सब लिखा होगा, मसलन झूठ, मकारियाँ, इधर उधर की बातें करना या इधर की उधर लगाना, उधर की इधर, जिसको लगाई बुझाई कहते हैं, तोहमतें, बहतान, गीबतें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये चेक करें कि क्या लिखा जा रहा है, क्योंकि इसी की बुनियाद पर हमारे लिए फैसला होगा कयामत के दिन कि हमने कहाँ जाना है। हम बाज़ दफ़ा कुरान भी पढ़ते हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, सदका भी कर रहे हैं, मगर सिर्फ एक ज़ुबान ऐसी चीज़ है कि इसकी वजह से हम अपनी नेकियों को बर्बाद कर देते हैं। एक हदीस से आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि एक दफ़ा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में सिर्फ ये फरमा दिया, वो तो छोटे कद की हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बात पे, हालांकि हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, फरमाया, ए आयशा, तुमने ऐसी बात कही है कि अगर इसको समंदर में डाल दिया जाए तो सारा समंदर कड़वा हो जाए। और हम कितनी दफ़ा किसी को कह देते हैं, मोटी, छोटी, ठिगनी, लंबू, पेंडू, पता नहीं क्या क्या अलकाबात लोगों को देते रहते हैं, ऐसे ही चलते फिरते, और बाज़ दफ़ा तो लानते करने से भी नहीं हटते। लानती, इतने आराम से किसी को लानत का लफ्ज़ कह देते हैं, हालांकि अगर वो ये लानत डिज़र्व नहीं करता तो ये लानत ऊपर जाती है और वहाँ से वापस कर दी जाती है और उसी बंदे पे पड़ जाती है जिसने उसको कहा होता है। ये छोटी बात नहीं है। एक दफा किसी ने अपनी ऊंटनी के ऊपर लानत भेज दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब इसको छोड़ दो, अब इस पे सवारी ना करो क्योंकि तुमने इसके ऊपर लानत भेज दी। ये एक बद्दुआइया कलमा है। तो लानते भेजना तो आम तौर पर लोग करते ही रहते हैं और इसको कोई बड़ी बात नहीं समझते। इसी वजह से, इस जुबान की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज्यादा लोग जहन्नुम में जाएंगे, इस जुबान, ये जुबान से क्या क्या कहते रहे। और ये जुबान ऐसी चीज है जो इतनी तेज चलती है कि पूरा दिन भी आप इससे काम करवाते रहें यानी बोलते रहें तो ये थकती नहीं है। बाकी आजाद थक जाते हैं, चल चल के भी आप थक जाते हैं, कुछ काम कर करके भी आप थक जाते हैं, बाजू भी थक जाते हैं, टांगे थक जाती हैं, लेकिन जुबान ऐसी भी चीज है कि ये बोल बोल के थकती ही नहीं। और जब इंसान इसके बारे में मुहतात नहीं होता तो बहुत सारी ऐसी बातें इससे निकल जाती हैं जो कि शायद उसकी इंटेंशन भी ना हो, नीयत भी ना हो, लेकिन बस चूंकि जुबान चलाने की आदत है तो कुछ ना कुछ तो चूंकि बोलना ही है, बोले बगैर चूंकि चैन नहीं आता तो फिर कुछ तो ऐसा निकल जाएगा जो कि गलत होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान बाज़ औक़ात अपनी जुबान से कोई ऐसा कलमा अदा कर देता है जो अल्लाह ताला को इतना नापसंद आता है कि वो अपना ठिकाना जहन्नुम में नीचे बना लेता है। तो देखिए ना, ये जुबान का एक बोल ही है ना, अल्लाह ना करे कि हमारी जुबान से कभी कोई ऐसी चीज निकल जाए जो कि हमारा बेड़ा गर्क कर दे और यहां जहन्नुम के अंदर नीचे हमारा ठिकाना बना दे, अल्लाह ना करे। इसी जुबान से बहुत सारी बुराइयां होती हैं, जैसे बदकलामी, बदअखलाकी, गीबत, चुगली, या इसी तरह बोहतानबाजी, गालियां, ये सब चीजें इसी जुबान से दी जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा बदतरीन आदमी वो है जिसे उसकी बदकलामी के डर से लोग छोड़ दें, यानी उसकी बदकलामी ऐसी है, ऐसे लोगों से बात करता है कि यानी लोगों से बात करना ही नहीं चाहते, डरते हैं कि इससे बात की तो वो पीछे पड़ जाएगा, कुछ उल्टा सीधा ही बोलेगा। इसलिए हमारे असलाफ में से किसी ने कहा कि सबसे आसान रोजा तो खाने और पीने का रोजा है, वो तो एक बच्चा भी रख लेता है, देखे ना आप, 8 10 12 साल के बच्चा भी आराम से रोजा रख लेता है। असल रोजा जुबान का रोजा है, दिल का रोजा है। दिल भी बदगुमानियों से भरे होते हैं, दिल भी कीनों से भरे होते हैं, इसी तरह जुबान से भी इंसान ऐसी बातें बोल देता है जो कि सही नहीं होती। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जिसके अखलाक अच्छे हों, क्योंकि अखलाक पे वर्क करना बहुत मुश्किल है। और आप देख लें कि ये जो गीबत है, गीबत का मतलब क्या होता है, जो किसी की बुराई बयान की जाए उसकी गैर मौजूदगी में, और उसके अंदर वो है, ऐसे नहीं कि झूठी बात है, उसके अंदर है लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में कही, अगर वो सुन ले तो उसको नापसंद हो, ये गीबत है। उससे, ये तो एक दर्जा है ना, इससे भी ऊपर का दर्जा बोहतान होता है कि जब किसी की बुराई हो, वो बुराई की जाए और वो मौजूद नहीं है, यानी उसके पीठ पीछे की जाए और वो बात भी झूठी है, जैसे कान भरने किसी के, हाँ जी उसने ऐसा किया ये किया और वो उसमें था भी नहीं, झूठ ही बता दिया, और उससे भी ऊपर का दर्जा नमीमा का है, जिसमें नमीमा, जिसको कहते हैं चुगली, नमीमा। तो चुगली क्या है कि किसी के बारे में बात की जाए और आपस के ताल्लुकात खराब करा दिए जाएं। मसलन है, कोई औरत अपने शौहर के कान भरती है उसकी माँ के खिलाफ, तो ये चुगली है, या सास बेटे के कान भरे उसकी बीवी के खिलाफ, ये चुगली हो गई। दो दोस्तों के दरमियान ताल्लुकात खराब करा दिए एक के कान भर के, उसको कहा आपको पता है फलां ने आपके बारे में क्या कहा है, अगर कोई आपसे ये कहे तो हरगिज ना कहें बताओ क्या कहा, बल्कि कहें कि नहीं मुझे नहीं सुनना। क्या वो अच्छी बात है? अच्छी बात है तो ठीक है, लेकिन अगर बुरी बात है तो मुझे ना सुनाओ। तो आप ऐसी बात सुनने से भी परहेज करें, इसलिए कि उसके बाद फिर क्या होगा, बदगुमानियां और कीने दिल के अंदर जगह पकड़ लेंगे, उससे नफरत हो जाएगी, ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। तो इसको चुगली कहते हैं कि दो लोगों के ताल्लुकात खराब करवा देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा, तो चुगली भी किससे होती है, जुबान से। हम इन बातों को कितना लाइट लेते हैं ना, ये देखिए ना, शैतान को पता है कि इस बंदे से मैं कोई कत्लो गारत चोरी डाके तो डलवा नहीं सकता, या और इस तरह के तो कोई काम करवा नहीं सकता, तो चुगली करवा लो, जन्नत में ही नहीं जाएगा, काम ही खत्म हो गया। इसी वजह से हमारे असलाफ इतना डरते थे इस जुबान की वजह से। हमारे पास समझ लें ये एक हथियार है, इससे खुद को भी काट सकते हैं, खुद को भी हलाक कर सकते हैं, और इससे कोई अच्छे काम भी कर सकते हैं, दुश्मन का खात्मा भी कर सकते हैं। एक ही तलवार होती है ना, उसी से अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपने दुश्मन को भी। तो इन बातों को मामूली लेते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है, हम अच्छे भले शरीफ लोग हैं, नेक लोग हैं, लेकिन चुगलियां कर रहे हैं। तो चुगलखोर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में ही नहीं जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि कयामत के दिन तुम अल्लाह के यहाँ उस शख्स को सबसे बदतर पाओगे जो कुछ लोगों के सामने एक रुख से जाता था और दूसरों के सामने दूसरे रुख से, यानी दो मुंह वाला। इधर गए तो इधर भी अच्छे बन गए, इधर इनकी तारीफें कर दी, उधर गए तो उनके सामने पहले वालों की बुराइयां कर दी और इनकी तारीफें शुरू कर दी। इधर एक चेहरा उधर दूसरा चेहरा, जैसे मुनाफिक होते थे। इधर आए तो इनके बन के बैठ गए, उधर गए तो उनके बन के बैठ गए। ये भी हमारे यहाँ बहुत ही आम आदत है, जिधर गए उसको अच्छा अच्छा कर देना और पीठ पीछे जाके उसकी बुराइयां करना। अल्लाह अकबर। तो सलफ में से एक फरमाते हैं कि 40 साल से मैंने कोई बात ऐसी नहीं की जिसका मेरे पास कोई जवाब ना हो अल्लाह के सामने कि मैंने वो क्यों कही थी। अल्लाह अकबर, यानी 40 साल से कहते हैं मैंने इतनी एहतियात की है अपनी जुबान के इस्तेमाल में कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कि मुझे अल्लाह के सामने ये कहना पड़े कि ये मैंने फजूल बात की या इसकी जरूरत नहीं थी। अल्लाह अकबर। और ये भी पता चलता है कि असलाफ में ऐसे भी लोग हुआ करते थे जिनका कोटा होता था कि आज मैंने बस इतना बोलना है। मसलन कोई सोचता है कि आज मैंने बस 500 अल्फाज बोलने हैं या 500 जुमले बोलने हैं, 500 बस हो गए तो उसके बाद खामोश, आज का कोटा खत्म हो गया। तो इससे देखें आप कि वो किस तरह से अपने आप को बांध के रखते थे, कितनी हिफाजत करते थे अपनी जुबान की बातों की। इसी जुबान से इंसान सुबहान अल्लाह कह के और कितने दर्जे पा सकता है, अपने मीजान को भर सकता है, वजनी कर सकता है, और इसी जुबान से इंसान लोगों की इज्जतें उछाल सकता है और अपने लिए जहन्नुम का रास्ता खोल सकता है। तो कोई भी अगर हमारे बारे में कोई बात करे तब भी हमें जरूरत नहीं कि हम उसकी उस इज्जत उछालते फिरें। देखिए एक हिकायत आती है ना कि एक बस में एक औरत सवार थी, उसके साथ एक और औरत भारी भरकम आके बैठी और उसने अपना इतना सारा सामान अपने साथ लिया हुआ था और उस सामान को उसने ऐसे रखा कि इस औरत को बिल्कुल प्रेस कर दिया। ये औरत फिर भी मुस्कुराती रही और इसने कुछ नहीं कहा। वो औरत डील डोल में भी ज्यादा थी, उसने जगह भी ज्यादा ले ली, अपने सामान को भी हर तरफ बिखेर दिया जिससे कि इसको तकलीफ होती रही, लेकिन वो फिर भी कुछ ना बोली। तो किसी ने उससे पूछा कि उसने आपके साथ ऐसा किया और आप कुछ भी नहीं बोली, मुस्कुराती रही। तो उसने आगे से जवाब दिया, इसलिए कि अगले स्टेशन पे तो उतर जाना है, बस इतना सा ही तो सफर है, तो क्या मैं उसको कहती। अगर इंसान जिंदगी के सफर को भी ऐसा ही समझ ले, इसने मेरे साथ बदतमीजी किया, उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे मेरे ऊपर कोई बात बनाई है, तो क्या हो गया, इतना सा ही तो बस सफर है, इतने मुख्तसर सफर में मैं इससे क्या लड़ूं, इतनी मुख्तसर से टाइम में मैंने क्या इसके साथ तू तू मैं करनी है। देखिए इंसान लोगों के चले जाने के बाद रोता है, लेकिन असल बात यह है कि लोगों के जिंदा होते भी उसकी कदर करनी चाहिए, उनकी बातों को दरगुजर कर देना चाहिए, जाने देना चाहिए, ताकि इंसान साफ दिल के साथ जिंदगी गुजार सके। हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला के हाँ आमाल जो पेश होते हैं वो हर पीर और जुमेरात को पेश होते हैं। तो जैसे कि दिन में भी फजर और असर के वक्त पेश होते हैं, इसी तरह पीर और जुमेरात को पेश होते हैं। तो कह कह दिया जाता है कि हदीस में आता है कि जन्नत के दरवाजे हर पीर और जुमेरात को खोल दिए जाते हैं और हर एक को माफ कर दिया जाता है, सिवाय उसके जो शिर्क करता है, और नंबर टू जो कीना रखता है अपने भाई से। यानी कीना रखना दिल में, उसके साथ बुरे ख्यालात रखना। अभी मुंह से नहीं कुछ बोला, लेकिन जब दिल में कुछ होता है तो वो जुबान पे जरूर आएगा। अल्लाह ताला फरमा देता है, इंतजार करो जब तक ये दोनों आपस में अपना मामला सही ना कर लें। इनको नहीं माफ करना, बाकी सबको माफ कर दिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम शिर्क नहीं करते, लेकिन शैतान फिर कहाँ से आएगा? ये कीना से। शैतान को पता है कि अब इससे शिर्क तो नहीं करवा सकता कि बुत परस्ती करे, लेकिन कीना रख लिया तो कीनों से तो दिल भरा हुआ है। उसने ऐसे कहा, उसने ये कहा, उसका वो है, फलां बुरा फलां बुरा, उसने फलां वक्त में मुझे इस तरह से हर्ट किया था, उसने फलां वक्त में मेरी ये बात की थी। तो इंसान की माफी के रास्ते में ये चीज हायल हो जाती है, ये रुकावट बन जाती है, उसकी माफी नहीं हो पाती। अब सोच लें, एक बंदा रोजे भी रख रहा है, नमाजें भी पढ़ रहा है, लेकिन उसने ताल्लुकात खराब किए हैं, उसने किसी के साथ अपने कीने रखे में, बोझ रखे में दिल में, तहज्जुदे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये दिल खराब है किसी से, और उसको पाला हुआ है दिल के अंदर, तो फिर उसके बाद तो माफी नहीं मिल सकती ये हदीस के मुताबिक। तो जिस किसी ने मेरे और आपके साथ कितना भी बुरा किया हो, उसके लिए नहीं, हम अपने लिए इस बात को छोड़ दें और माफ कर दें, ताकि हमारी माफी हो सके। और देखें, जरूरी नहीं कि आप उसके साथ बेस्ट फ्रेंड ही बन जाएं, मगर कम से कम सलाम दुआ रखें, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद बहुत सारे लोग कहेंगे, लेकिन उसने तो हमारे साथ ये किया, उसने तो मेरे साथ फलां किया, और फलां वक्त में ये हुआ, मैं तो उसको भूल ही नहीं सकती, मैं तो ये नहीं। तो ठीक है, आप आज उसके साथ कम से कम कता ताल्लुक की बायकॉट खत्म कर दें और कह दें, मैंने इसको माफ कर दिया, मैंने जाने दिया, ताकि अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। अब बाज लोग कहते हैं, हमने तो कोशिश की, हमने तो फोन भी मिलाया, उसने फोन बंद कर दिया, हमने टेक्स्ट किया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो अगर आपकी वाकई कोशिश ईमानदारी के साथ है और आपका अपना दिल साफ है, तो अल्लाह ताला जाहिर को भी जानने वाला और बातिन को भी। मगर एक बात याद रखिएगा, अगर हमारे अंदर बद्दियानती है तो हम इस दुनिया में लोगों को मुतमईन कर सकते हैं, मगर अल्लाह ताला वो जो दिलों के भेदों को जानता है, उसको हम झूठ कह के मुतमईन नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई को 3 दिन से ज्यादा छोड़े, अगर इस दौरान इनमें से एक भी मर गया तो वो जहन्नमी होगा, जहन्नमी होगा। सोचे जरा, अब हम तो जहन्नमी सोचते हैं कि वो काफिर जहन्नमी, शराबी जहन्नमी, जानी जहन्नमी, जो चोरी डाके करता है वो जहन्नमी, हम तो इस तरह की बातें सोचते हैं ना। इस चीज को तो हम कभी सोचते भी नहीं कि इस बात से भी कुछ हो सकता है। तो इस चीज को समझना चाहिए कि अगर कता ताल्लुक किए हुए तो उसके बाद मुझे ये तहज्जुदें, ये करें, ये ना हो कि ये सब यहीं की वहीं पड़ी रह जाए, क्योंकि मैंने बुग्ज रखे हुए हैं दिल में, ओके, मेरे ताल्लुकात खराब है, भाई भाई से कटा हुआ है, बहन भाई बात नहीं करते, चचा मामू खाला पुप्पी से बिल्कुल कट ऑफ किया हुआ है, कब से उनसे नहीं बात की, पुरानी पुरानी बातें लेके बैठे हुए। आप देखिए, मिस्ताह जो थे, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के कजन भी थे और मुहाजिर भी थे, और बहुत ही मुफलिस सहाबी थे, यानी बहुत गरीब थे। तो जब आयशा रजी अल्लाह तआला पर तोहमत लगी, तो मिस्ताह भी उनमें शामिल थे जिन्होंने इस अफवाह को फैलाने में हिस्सा लिया था, और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला उनके घर का सारा खर्चा चलाते थे। जब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला उनको पता चला कि मेरी बेटी के बारे में इसने ये बात की है, तो फरमाया, बस आज के बाद बंद ही है, सब खर्चा मैंने देना बंद कर देना। तो अल्लाह तआला ने आयात उतार दी कुरान में कि माफ कर दो और दरगुजर करो, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तआला तुम्हें माफ कर दे? तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला उन्होंने फौरन बोले, या अल्लाह, मैं चाहता हूँ तू मुझे माफ कर दे, मैं चाहता हूँ तू मुझे माफ कर दे। आपके भी जहन में कोई लोग आ रहे होंगे जिनके साथ आपने कथा ताल्लुक ही की हुई या कीने रखे में, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने कुछ ऐसा आपके साथ किया। तो सोच ले कि जिसने बेटी के ऊपर तोहमत लगाई, ये कोई मामूली बात नहीं है, छोटी भी बात नहीं, तोहमत भी किस चीज की, जिना की। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने माफ कर दिया। अल्लाह तआला ने क्या फरमाया, ये नहीं कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ना तो कोई बात नहीं, वो कट ऑफ कर भी देते तो क्या, उनकी तो नेकियां इतनी ज्यादा थी, हमारी क्या नेकियां होंगी जितनी उनकी नेकियां थी, उनसे ज्यादा तो नहीं हमारी हो सकती। फिर भी अल्लाह तआला ने फरमाया कि माफ कर दो, दरगुजर करो, क्या तुम नहीं चाहती अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। तो उन्होंने ये नहीं कहा मैंने तो इतनी नेकियां की हुई है तो क्या हो गया अगर इतना सा ये कर दिया, मेरी मर्जी, मैं दूं कि नहीं दूं किसी को, नहीं, उन्होंने फौरन माफ कर दी। अब सोच लें जिसने हमारे साथ बुरा किया या जितना भी बुरा किया, सोच लें कि उसने इससे भी ज्यादा किया होगा जितना मिस्ताह ने किया था, तो फिर माफ कर दें। इसलिए ताकि अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे और कहीं यही बात मेरी माफी के रास्ते में हायल ना हो जाए। आप देखे हसन बसरी जो थे उनके बारे में आता है, उनके हमसाये ने कहा कि मैंने सुना रात के वक्त हसन बसरी को तहज्जुद पढ़ रहे हैं, और वो घर छोटे छोटे होते थे तो आवाजें भी इधर से उधर जाती थी, तो उसने कहा कि मैंने सुना कि सारी रात वो एक ही बात करते रहे, ए अल्लाह उसको माफ कर देना जिसने मुझ पे जुल्म किया, ए अल्लाह उसको माफ कर देना जिसने मुझ पे जुल्म किया, ए अल्लाह उसको माफ कर देना जिसने मुझ पे जुल्म किया, सारी रात यही कहते रहे। अगले दिन हमसाया उनके पास गया, कहने लगा कि मैं अबू सईद, तुमने ये इतनी दफा दुआ की, इतनी दफा ये दुआ मांगी कि मेरा दिल किया कि काश मैं भी उनमें होता जिन्होंने तुम पे जुल्म किया होता, तो क्यों इतनी दफा आपने ये कहा। तो फरमाया इसलिए कि मैंने कुरान में पढ़ा और मैंने इसको याद कर लिया कि अल्लाह ताला ने फरमाया व मन आफा व असलाह व अजरुहू अलल्लाह, जो माफ कर दे, दरगुजर कर दे, इसलाह कर ले, तो उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह ताला ने ये फरमा लिया उसका अजर मेरे जिम्मे है, मतलब मैं ही उसको दूंगा, ये नहीं फरमाया जन्नत मिलेगी, ये नेमत मिलेगी, ये भलाई, बस वो मेरे जिम्मे है, मैं उसको जो दूंगा ना फिर वो देखेगा। तो फरमाया कि मैं उस अजर की खातिर मैंने ये कहा कि अल्लाह ताला जिसने मेरे ऊपर जुल्म किया मैंने उसको माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, कितने बड़े दिलों वाले लोग थे। दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हमारे दिलों को बड़ा कर दे, इतने सुकड़ गए हैं कि जरा जरा किसी किसी की बात लेके हम बैठ जाते, वो सारी जिंदगी उसको नहीं छोड़ते, वो हमारी शादी पे नहीं आए, वो हमारा फलां फौत हो गया फौतगी पे नहीं आए, उसने ऐसे कर दिया, उसने मेरे बच्चे को ये कह दिया, उसने मुझे फलां वक्त में ताना दे दिया, और बातों को भूलते नहीं। तो आज का पैगाम यही है कि हम माफ कर दें, जब हमारा दिल साफ होगा ना तो चुगली भी नहीं होगी, गइबत भी नहीं होगी, बहुत सारी बुराइयों से हम बच जाएंगे। वो दिल साफ है ना, जो जुबान है वो दिल का ही तो आईना होती है, दिल में जो कुछ होता है वही जुबान पे आता है, दिल में गलाजत होती है तो जुबान देखना गंदी ही होगी, दिल अगर पाक साफ होगा जुबान भी पाक साफ होगी। इब्ने मसूद के बारे में आता है, एक दफा वो अपने दोस्तों के साथ बाजार में जा रहे थे, तो उनके पैसे उनकी पगड़ी में रखे हुए थे, एक चोर आया उसने तेजी से पैसे झपटे और भाग गया, लोगों ने शोर मचा दिया और उसको बददुआएं देने लगे, या अल्लाह इसको हलाक कर देना, इसके हाथ कटे हैं, ये ऐसे वैसे, क्योंकि इसने उनके सहाबी रसूल के देखे ना पैसे चुरा लिए। अब्दुल्ला बिन मसूद ने हाथ उठाए और फरमाया ए अल्लाह अगर उसको जरूरत थी तो अल्लाह ताला उसको इसमें बरकत दे देना, और अल्लाह अगर उसने गुनाह कर दिया तो अल्लाह ताला इसका ये गुना आखिरी गुना बना देना। अल्लाह अकबर, कितने बड़े जर्फ थे उन लोगों के, ऐसे ही नहीं वो सहाबी थे। तो हम छोटी छोटी बातों को ना लेके बैठे, बाज़ जब हम नेकियों के भी काम कर रहे होते हैं किसी इदारे में है या किसी मस्जिद में है, लेकिन वहां पे भी हमने इतने कीने पाले होते हैं, वो टेढ़ी आंख से मुझे देखता, उसने ऐसे कर दिया, वो इतने ताल्लुकात हमने खराब किए होते हैं, उसने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, कितनी सारी चीजें हैं। तो आज ही ये सोच लें कि मैंने उसको माफ कर दिया, आज ही एक टेक्स्ट कर दें कि सलाम दुआ का, हाल अहवाल का, रमजान मुबारक का, इस तरह से कोई भी छोटी सी बात कर लें, मगर कता ताल्लुक ना करें। और याद रखिएगा कि दिल में जरूर ये बात आएगी कि इनको क्या पता, ये तो ऐसे ही दर्स दे रही हैं, तो इनको क्या पता ये कितना मुश्किल है, और मुझे पता है ना कि मेरे साथ क्या हुआ। बस कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। ये बातें आएंगी दिल में, उसी वक्त सोचिएगा, अजरुहू अल्लाह, अल्लाह के जिम्मे है, उसने अपने जिम्मे ले लिया इसका अजर। तो हम जो कहते हैं ना, अल्लाह के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार, अपना माल लुटाने को तैयार, अपने पता नहीं क्या क्या चीजें करने को तैयार हूं, तो इतनी सी अपनी अना की कुर्बानी नहीं क्या हम दे सकते अल्लाह ही की खातिर? तो आज ये तहिया कीजिए कि मैंने माफ करना है, मैंने ताल्लुकात को बहाल करना है, और कम अज कम सलाम दुआ को मैंने शुरू करना है, और मैंने कीने नहीं पालने दिल के अंदर। अल्लाह ताला हम सबकी इसमें मदद फरमाए। आज मैं आपको उस जिक्र के बारे में एक और बात बताना चाहती हूँ जिसका मैंने आपको कहा था, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो याद रखिए कि जब कोई ये चार कलिमात कहता है तो ये कलिमात ऐसी हैं जो आसमान की तरफ उठ के जाते हैं, और इनकी एक भिनभिनाहट होती है जैसे मक्खियों की भिनभिनाहट। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। देखें अब हमें तो नहीं पता कि ये ऐसा भी होता है, तो मक्खियों की भिनभिनाहट की जैसे जी जी मक्खियां करती हैं ना शहद की मक्खी, तो इनकी भी भिनभिनाहट होती है। ये ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, और अल्लाह ताला के अर्श तक पहुंच जाते हैं, और अल्लाह ताला के अर्श के गिर्द चक्कर लगाते हैं। अल्लाह अकबर। और उस बंदे का जिक्र अल्लाह ताला के पास करते हैं जिसने ये कलिमात कहे थे। सुबहान अल्लाह। सोचे कि ये जिक्र हमारा हमारी याद दहानी अल्लाह ताला के पास करवाता है। ये कलिमात जो हैं वो कहाँ तक हमारा नाम जिक्र कराते हैं, ये कहाँ तक हमारा नाम लेके ऊपर जाते हैं। आपका नाम टीवी में नशर हो जाए और वो टीवी में आपका नाम लिया जाए, या किसी बिलबोर्ड पे आपका नाम लिखा हो, तो कितना इंसान को फख्र होता है कि देखो जी मेरे बारे में ये बताया गया, मेरा नाम लिया गया। कुछ लोग नाम की तख्तियां लगवाते हैं कहीं कि जहाँ पे मेरा नाम लिखा जाए, मैंने इतनी चैरिटी दी है। तो सोचें अल्लाह ताला के अर्श तक किसी का नाम पहुंच जाए, कितने बड़े ऑनर की बात है उसके लिए, कितना बड़ा एजाज है। तो ये कलिमात इतनी बड़ी अहमियत रखते हैं और अल्लाह ताला के पास हमारी याद दिलाते रहते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो इन कलिमात को अपनी जुबान पे जारी रखें, बल्कि अपना तकिया कलाम बना लें। बजाए कई लोगों का तकिया कलाम कुछ होता है, कोई किसी ने कुछ फजूल कलिमात को तकिया कलाम बनाया होता है। तो सुभान अल्लाह, बात बात पे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बात बात पे अल्लाह अकबर, बात बात पे ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह कहने की आदत डाल लीजिए तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं पेश आएगी। अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए। आज की दुआ जो है वो भी बड़ी अहम दुआ है, और ये दुआ बेहतर है कि हम सलाम फेरने से पहले ही हम अपनी नमाजों में भी कह लिया करें, और वो ये इस्तिग़फ़ार की दुआ है, क्योंकि हम सबको बख्शिश चाहिए। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा कोई गुनाह हमारी बख्शिश के रास्ते में हायल ना हो, अगर कोई गुनाह है तो अल्लाह ताला हमसे दूर कर दे, कोई कीना है तो वो भी हमसे दूर कर दे, मगर कोई भी चीज़ हमारी बख्शिश के रास्ते में ना आ जाए। कहीं हम इतनी बख्शिश मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, ये ना हो कि कोई हमारा अपना ही गुनाह है जो रुकावट बना खड़ा हो जाए, तो फिर कैसे बख्शिश होगी? तो ये एक कलिमात है इस्तिग़फ़ार के कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगो अल्लाह ताला के हजूर तौबा करो। मैं दिन में 100 दफ़ा अल्लाह के हजूर तौबा करता हूँ, और जो शख्स ये कलिमात कहे जिनको मैं अभी आपको बताऊंगी, तो अल्लाह ताला उसको बख्श देता है चाहे लड़ाई से भागा हुआ हो। अल्लाह अकबर। यानी कबीरा गुनाह का मुर्तकिब भी हो जाए तब भी अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा। और इन कलिमात को आप सजदे में भी कह सकते हैं, क्योंकि सजदे में भी इंसान अल्लाह ताला के बहुत नजदीक होता है और उसमें दुआएं कबूल होती हैं, तो इसलिए आप इनको उस वक्त भी कह सकते हैं। और कलिमात बहुत आसान है, अस्तग़फिरुल्लाह, वैसे भी आप अस्तग़फिरुल्लाह जानते हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा इजाफा कर लीजिए, अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ला इलाहा इल्लल्लाह तो आप जानते हैं, तो यहाँ पे अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा, और फिर उसके आगे अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना अल हय और अल क़य्यूम, और हो सकता है कि ये इस्मे आजम ही हो। बाज का ख्याल है कि यही इस्मे आजम है अल्लाह ताला के, ये दो नाम जिनके जरिए जो दुआ की जाए वो कबूल होती है। तो इस दुआ के अंदर अगर ये इस्मे आजम है तो अल्लाह ताला का इस्मे आजम भी मौजूद है, वह अतूबु इलैही, और मैं तौबा करता हूँ अल्लाह ताला के हजूर। तो अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैही। ये हैं कलिमात दुआ के, जो दुआ हमने मांगते रहना है अल्लाह ताला से ताकि हमारी बख्शिश हो जाए। और इन कलिमात को सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, मैं हर दिन इनके फजाइल बताती जा रही हूँ आपको ताकि आपको इनका शौक पैदा हो और आप इन कलिमात को दोहराते रहें रोज़ाना, और कोशिश करें कि हर वक्त कोई जवाल का टाइम नहीं है इन कलिमात के लिए, और दुआओं के लिए भी कोई जवाल का टाइम नहीं है। आप किसी वक्त भी ये दुआएं मांग सकते हैं और ये कलिमात कह सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।